ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय सभा द्वारा पानी जहाज संचालन तथा व्यवस्थापन विधेयक 2081 हुआ पारित। वहीं प्रतिनिधि सभा की बैठक विजिट वीजा प्रकरण में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्षी के बीच सहमति न होने पर फिर से बुधवार तक के लिए हुई स्थगित। काठमांडू तराई मधेश द्रुत मार्ग परियोजना के आरंभ बिंदु विवाद के संबंध में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने स्थानीय वासियों के प्रतिनिधियों के साथ किया विचार विमर्श। कहा, स्थानीय लोगों को नुकसान पहुंचाने का सरकार का नहीं है उद्देश्य। प्रत्यारोपण में उपयोग होने वाली चीजें सरकारी फार्मेसियों में अनिवार्य रखने के लिए अस्पतालों और प्रतिष्ठानों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया परिपत्र। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 12 देशों के नागरिकों पर लगाया गया ट्रैवल बैन आज से हो गया है लागू। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने पानी जहाज संचालन तथा व्यवस्थापन विधेयक 2081 को पारित किया है। इसी तरह बैठक में उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिनिधि सभा से प्राप्त भंसार विधेयक 2080 पर विचार किए जाने संबंधी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। इसके अलावा बैठक में विधायन व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष तुलसा कुमारी दाहाल ने संवैधानिक परिषद कार्य कर्तव्य अधिकार और कार्यप्रणाली संबंधी प्रथम संशोधन विधेयक 2079 पर समिति की रिपोर्ट पेश की। राष्ट्रीय सभा के सचिव डॉ सुरेंद्र अर्याल ने जलस्रोत विधेयक 2081 के संबंध में प्रतिनिधि सभा से प्राप्त संदेश सभा के समक्ष रखा। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक ज्येष्ठ 30 गति शुक्रवार दोपहर 1:15 के लिए बुलाई गई है। प्रतिनिधि सभा की बैठक ज्येष्ठ 28 यानी परसों बुधवार दोपहर 1:00 तक के लिए स्थगित हो गई है। आज दोपहर 3:35 पर आधे घंटे के बाद के लिए निर्धारित बैठक न हो सकने के बाद संसद सचिवालय ने सूचना प्रकाशित कर बताया कि अगली बैठक बुधवार 1:00 होगी। बता दें कि प्रतिपक्षी दल विजिट वीजा मामले की छानबीन के लिए समिति गठन न होने तक संसद को अवरुद्ध करने की अड़ान पर डटे हुए हैं। दलों के बीच विचार विमर्श और सभामुख के बार बार प्रयासों के बावजूद सहमति न बन पाने के कारण प्रतिनिधि सभा की बैठक अवरुद्ध होती आ रही है। संसद के गतिरोध को समाप्त करने के लिए आज भी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्षी दलों की संयुक्त और अलग अलग बैठकें जरूर हुई लेकिन सहमति नहीं बन पाई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज ललितपुर के खोकना और बोंगमती के स्थानीय निवासियों के प्रतिनिधियों के साथ काठमांडू तराई मधेश द्रुतमार्ग सड़क परियोजना की आरंभ बिंदु को लेकर विवाद और समाधान के उपायों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में प्रधानमंत्री ओली से मुलाकात करने वालों में पूर्व खोकना गावेसा के पूर्व अध्यक्ष मदन कृष्ण डंगोल, नेकपा एमाले ललितपुर महानगर समिति के अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाक्य, स्थानीय जनसरोकार समिति के संयोजक नेपाल डंगोल और एमाले ललितपुर महानगर वार्ड नंबर 21 समिति के अध्यक्ष ज्ञान भक्त महर्जन शामिल थे। उन्होंने समस्या और संभावित समाधान पर अपने सुझाव रखे थे। स्थानीय जनसरोकार समिति ने कहा कि यदि खोकना को शुरुआती बिंदु बनाया जाता है तो पारंपरिक सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए उन्होंने खोकना से 5.5 किलोमीटर नीचे डुकू छाप को वैकल्पिक स्थल के रूप में प्रस्तावित किया है। प्रधानमंत्री ओली ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य स्थानीय लोगों को किसी भी तरह की हानि पहुंचाकर विकास करना नहीं है। उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय लेने से पहले वे स्वयं स्थल का निरीक्षण करने आएंगे। 70.97 किलोमीटर लंबी यह सड़क परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 2,11,93 करोड़ रुपए है, विक्रम संवत 2074 में शुरू हुई थी। इस परियोजना को विक्रम संवत 2083 तक पूरा करने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने प्रत्यारोपण में उपयोग होने वाली चीजें सरकारी फार्मेसियों में ही अनिवार्य रखने के लिए परिपत्र किया है। दिल हड्डी के साथ साथ अन्य मरीजों में प्रत्यारोपण व इलाज में उपयोग होने वाली चीजों को अस्पताल की फार्मेसियों में ही उपलब्ध करवाने के लिए सरकारी अस्पतालों और प्रतिष्ठानों को परिपत्र किया गया है। यह जानकारी मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ प्रकाश बुढ़ाथोकी ने दी। बता दें कि बहरहाल सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध न होने और उनके मूल्य भी सार्वजनिक न होने के कारण मरीजों को महंगी कीमतों में प्रत्यारोपण की चीजें खरीदनी पड़ रही हैं। मॉनसून आने के साथ ही डेंगू संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। बता दें कि जून से अगस्त तक के समय को डेंगू संक्रमण के समय के रूप में लिया जाता है। एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा ईडीसीडी के तथ्यांक अनुसार 1 जनवरी से 8 जून तक 1255 की तादाद में डेंगू के संक्रमितों के मामले सामने आए हैं। कुल 77 में से 72 जिलों में डेंगू संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें सबसे अधिक संक्रमितों की संख्या काठमांडू में है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर, राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *1415 ह्यास डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय ने देश के कुछ क्षेत्रों में मवेशियों में लंपी स्किन रोग और अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले सामने आने के मद्देनजर रोग की वास्तविक स्थिति का अध्ययन कर तत्काल नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय पहचानने के लिए अपने अधीनस्थ निकायों को परिचालित किया है। कृषि तथा पशुपालन विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में पशु सेवा विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सकों के नेतृत्व में पशुपालन रोग अनुसंधान प्रयोगशाला प्रदेश मंत्रालय के संबंधित अधिकृत और स्थानीय तह समिति की सहभागिता में टोली गठन कर तत्काल रोग प्रभावित क्षेत्रों में परिचालन करने का निर्णय किया गया। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का ने पश्चिम नवलपरासी में नेपाल गंडक पश्चिम नहर सिंचाई परियोजना के सेटलिंग बेसिन का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में मंत्री खड़का ने कहा कि नवलपरासी के नागरिकों को भुगतनी पड़ रही डुबान और सिंचाई अभाव की समस्या के समाधान के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि गंडक पश्चिमी नहर का सेटलिंग बेसिन 35 करोड़ रुपए की लागत में 2.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। मुगलिन पोखरा सड़क विस्तार परियोजना के पश्चिम खंड में 53% काम पूरा हो चुका है। तनहों के जामुने से लेकर पोखरा के सेती पुल तक के खंड में अब तक आधा काम पूरा हुआ है। ये जानकारी मुगलिन पोखरा सड़क परियोजना के पश्चिम खंड ने दी। योजना प्रमुख कृष्ण बहादुर कुंवर ने बताया कि 24 किलोमीटर के खंड में दो तरफा और 12.8 किलोमीटर के खंड में एक तरफा सड़क का ब्लैक टॉप कार्य पूरा हो चुका है। गैर आवासीय नेपालियों ने वंशज के आधार पर प्राप्त नागरिकता को निरंतरता देने की मांग की है। प्रतिनिधि सभा की राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति की आज की बैठक में नेपाल नागरिकता आयन 2063 में संशोधन के लिए प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा के दौरान गैर आवासीय नेपाली संघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ उपेन्द्र महतो ने कहा कि नेपाल का संविधान लागू होने के बाद से विश्वभर में फैले गैर आवासीय नेपालियों को भी नेपाली नागरिक के समान अधिकार दिया जाना चाहिए। बांके की राप्ती सोनारी गांवपालिका वार्ड नंबर 9 में बाढ़ और कटाव से बस्ती को बचाने के लिए भत्ता खोला नदी पर तटबंधन किया गया है। गुरुवा गांव से होते हुए ढकेरी बाजार तक के क्षेत्र में हर साल आने वाली बाढ़ और कटाव को रोकने के लिए भत्ता खोला नदी पर दीर्घकालीन योजना के तहत तटबंध का निर्माण किया गया है। ये जानकारी राप्ती सोनारी गांवपालिका 9 के वार्ड अध्यक्ष सोहनलाल थारू ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 12 देशों के नागरिकों पर लगाया गया यात्रा प्रतिबंध आज से लागू हो गया है। ट्रंप ने पिछले हफ्ते इस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। बता दें कि इस प्रतिबंध के कारण अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिक अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकेंगे। वहीं 7 देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश को आंशिक रूप से सीमित किया गया है। ये देश हैं बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सियेरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला। भारत के मुंबई में हुए लोकल ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर CPRO स्वप्निल धनराज नीला ने बताया है कि मुंबई के मुंब्रा रेल हादसे में घायल 13 लोगों में से 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 4 अन्य घायलों का इलाज जारी है। CPRO स्वप्निल धनराज नीला के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे बोर्ड ने सभी मौजूदा रेक में बदलाव करने का फैसला किया है। सभी नए रेक एसी रेक होंगे जिनमें ऑटोमेटेड डोर क्लोजर सिस्टम होंगे। उन्होंने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे फुटबोर्ड पर यात्रा करने से बचें। सीपीआरओ के मुताबिक सभी स्टेशनों पर इसकी घोषणा की जा रही है। आज सुबह लगभग 9:30 बजे मुंबई के ठाणे जिले के मुम्ब्रा रेलवे स्टेशन के पास कुछ यात्री एक चलती लोकल ट्रेन से गिर गए थे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय सभा द्वारा पानी जहाज संचालन तथा व्यवस्थापन विधेयक 2081 हुआ पारित। वहीं प्रतिनिधि सभा की बैठक विजिट वीजा प्रकरण में सत्तापक्ष और प्रतिपक्षी के बीच सहमति न होने पर फिर से बुधवार तक के लिए हुई स्थगित। काठमांडू तराई मधेश द्रुतमार्ग परियोजना की आरंभ बिंदु विवाद के संबंध में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने स्थानीय वासियों के प्रतिनिधियों के साथ किया विचार विमर्श। कहा, स्थानीय लोगों को नुकसान पहुंचाने का सरकार का नहीं है उद्देश्य। प्रत्यारोपण में उपयोग होने वाली चीजें सरकारी फार्मेसियों में अनिवार्य रखने के लिए अस्पतालों और प्रतिष्ठानों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया परिपत्र। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 12 देशों के नागरिकों पर लगाया गया ट्रैवल बैन आज से हो गया है लागू। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।